हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंध अध्याय 9 श्लोक संख्या 8, 9 और 10। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वतां विदुरकाष्ठाय मुहुर्कुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशये नराधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंस्य ते नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यत्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हम् लोकस्य सत्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। किरात हूण नृपुलिन्द पुलकषा आभीरशुम्भा यवनाभसादय येने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सत्यं स्मृतिं विधि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत् किलास्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। भूतर्महद्भिर्य इमां पुरो विभु निर्मायशेते यदमूषु पुरुष मुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मक सोलं कृषिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे पपुर्ज्ञानमयं साम्यां यन्मुखाम्बुरुहासवम् नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते युत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैतिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशाक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर। वासुदेव गौरभक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय 9, जिसका शीर्षक है श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों का उत्तर। परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न पूछे थे एक एक करके सुखदेव गोस्वामी उनका उत्तर देते हैं और ब्रह्मा जी के प्राकट्य के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि भगवान के नाभि कमल से एक कमल पुष्प उत्पन्न हुआ जिसपे ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी अपने प्राकट्य के स्रोत को ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किए परंतु कहीं से भी उन्हें कुछ पता न चला कि क्या किस स्रोत के द्वारा मैं प्रकट हुआ हूँ। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने ध्वनि श्रवण की, एक पानी जल के अंदर से एक ध्वनि उनको सुनाई दी। तब 16वां और 21वां शब्द जो वर्णमाला के हैं उनको सुनने के बाद ब्रह्मा जी को लगा कि मुझे दिव्य आदेश यही है कि मुझे तपस्या करनी चाहिए। तो यही सोचकर ब्रह्मा जी ने तपस्या प्रारंभ की। और श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि ये जो तपस्या है वही हमारे जीवन का वास्तविक आधार है। दिव्यं सहस्रादमामोघदर्शनो जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्यतस्माखिललोकतापनम् तपस्तपीयास्तपतां समाहितः। दिव्यं सहस्रादमामोघदर्शनो जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्यतस्माखिललोकतापनम् तपस्तपीयास्तपतां समाहितः। शब्दार्थ दिव्यं सहस्राब्द अमोघ दर्शनम्। दिव्यम मतलब स्वर्ग के देवताओं के, सहस्र मतलब 1000, अब्दम यानी वर्ष। ब्रह्मा जी ने कितने टाइम तक तपस्या की? देवताओं के 1000 वर्ष तक। दिव्यम सहस्राब्दम अमोघ यानी निर्मल निष्कलंक दर्शन, ऐसी जीवन दृष्टि वाला जो बिल्कुल पवित्रता के साथ 1000 सौर वर्ष या 1000 दिव्य वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। उसके बाद जीतानलात्मा विजितो भयेन, जित यानी नियंत्र किया, अनिल यानी प्राण, आत्मा यानी मन, विजित मना वशीकृत, उभया यानी दोनों इंद्रिय वाले, इंद्रियों मन प्राण को वश में किया, विजित मना उनको वशीकृत किया। अतप्यतस्माखिल लोकतापन, अतप्य मतलब तपस्या की, स्म भूतकाल में, अखिल लोक अखिल मन समस्त लोक मन, ग्रह तापनम यानी प्रकाश प्रकाशनार्थ, और तप यानी तपस्या, तपियन अत्यंत कठिन तपस्या, तपताम यानी समस्त तपस्वियों का समाहित। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी को तप 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 की आवाज आई तो उन्होंने तपस्या प्रारंभ की और वो तपस्या उन्होंने बहुत समय तक यानी देवताओं के 1000 वर्षों तक बहुत ही पवित्रता के साथ अपने इंद्रियों और मन को जीत कर उस तपस्या की। और क्योंकि ब्रह्मा जी प्रथम जीव थे और प्रथम जीव ने जो पहला कार्य किया वही हम सब जीव आत्माओं के लिए एक शिक्षा है, अर्थात तपस्या ही जीवन है। और ये महान तपस्या जो ब्रह्मा जी ने की, क्योंकि उन्होंने प्रथम जीव होकर इतना समय तक तपस्या की तो समस्त तपस्वियों में वो सबसे महान तपस्वी जाने जाते हैं, तपस तपियास तपताम समाहित। अनुवाद देखिए, ब्रह्मा जी ने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्ष तक तपस्या की। उन्होंने आकाश से यह दिव्य अनुगुण सुनी और इसे ईश्वरीय मान लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या की वह जीव आत्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्वियों में महानतम माने जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझाने के ब्रह्मा जी ने तप की रहस्यमय ध्वनि सुनी, किंतु वे ये नहीं देख पाए कि इसको कौन उच्चरित कर रहा है। फिर भी उन्होंने इस आदेश को उपयोगी समझकर स्वीकार कर लिया और 1000 दिव्य वर्ष तक तपस्या करते रहे। एक दिव्य वर्ष हमारे 6 × 30 × 12 × 1000 वर्ष के तुल्य होता है। ध्वनि को स्वीकार करने का मूल कारण यह था कि उनमें भगवान विषयक विशुद्ध दृष्टि थी और इस सही दृष्टि के कारण उन्होंने भगवान तथा भगवान के आदेश में कोई अंतर नहीं माना। भले ही भगवान स्वयं उपस्थित ना हो, किंतु उनमें तथा उनकी ध्वनि में कोई अंतर नहीं होता। ईश्वर को जानने की सर्वोत्तम विधि यही है कि ऐसे ईश्वरीय आदेश को शिरोधार्य कर लिया जाए। और ब्रह्मा जो हर एक के आदि गुरु हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की इस विधि को जीते जागते उदाहरण हैं। दिव्य ध्वनि की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, क्योंकि ध्वनि करता ओझल रहता है। अतः श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता या संसार के किसी अन्य शास्त्र को कभी भी दिव्य शक्ति से विहीन सामान्य संसारी ध्वनि या वाणी नहीं समझना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे कि ब्रह्मा जी को आवाज आई कि आप तप करो। वो देख नहीं पाए कि आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन वो इसी शब्द ध्वनि को ही अपने लिए भगवान का आदेश समझकर शिरोधारी करके तपस्या करने लगे और 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। उसी तरह से हमारे लिए ये आदेश है कि भले ही भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, लेकिन जो भगवान के आदेश है उनको हमें स्वीकार करना चाहिए। यही हमारे लिए उपयोगी है। और भगवान के आदेश क्या है? जो श्रीमद् भगवत गीता में जी भगवान ने आदेश दिया है कि मेरी भक्ति करो, मेरा नाम जप करो, मन मुझ में लगाओ। और उसके साथ साथ भगवान ने कहा, जन्म कर्म शमे दिव्यम, मेरे कर्म और जन्म सब दिव्य हैं, उनको जानो। और तत्व से जो इसको जानता है वही मुझे प्राप्त करता है। तो गीता और भागवतम श्रवण करना, श्री प्रभुपाद जी साफ साफ बोलते हैं कि गीता और भागवतम संसार के किसी अन्य शास्त्र को कभी भी दिव्य शक्ति से विहीन नहीं समझना चाहिए। उससे संसारी ध्वनि नहीं समझना चाहिए, बल्कि भगवान का आदेश समझकर स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य को इस दिव्य ध्वनि को उपयुक्त स्रोत से प्राप्त करके उसे सत्य मानकर बिना किसी हिचक के आदेश के तौर पर पालन करना चाहिए। सफलता का रहस्य यही है कि प्रामाणिक गुरु से अर्थात उपयुक्त स्रोत से ध्वनि ग्रहण की जाए। संसारी कृत्रिम ध्वनि में शक्ति नहीं होती, अतः प्रामाणिक व्यक्ति से प्राप्त तथाकथित दिव्य ध्वनि में कोई शक्ति नहीं होती। ऐसी दिव्य शक्ति को जान लेने की योग्यता होनी चाहिए और जिसे अपने विवेक से या कि भाग्य से गुरु द्वारा ये दिव्य ध्वनि प्राप्त हो सके, समझिए कि उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। किंतु शिष्य को गुरु के आदेश का पालन करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने प्रामाणिक गुरु साक्षात भगवान के आदेश का पालन किया था, शिष्य का एकमात्र कर्तव्य यही है कि वह प्रामाणिक गुरु का आदेश माने और प्रामाणिक गुरु के आदेश का पूर्ण श्रद्धा सहित पालन करना ही सफलता का रहस्य है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात यह श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान आज आपको आदेश देते हैं किसके द्वारा, हमारे प्रामाणिक गुरु जो है मोनोफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, जिसके द्वारा हमको भगवान का आदेश प्राप्त होता है। तो हमारा एकमात्र कर्तव्य यही है कि हम अपने गुरु महाराज की आज्ञाओं का, उनके आदेश का पालन करें। इसी से हम अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं। और यहाँ आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने अपने दोनों प्रकार की इंद्रियों, कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया, क्योंकि इनका उपयोग भगवान के आदेश पालन में करना था। अतः इंद्रियों के नियंत्रण का अर्थ है उन्हें भगवान की दिव्य सेवा में लगाना। भगवान का आदेश तो प्रामाणिक गुरु के माध्यम से शिष्य परंपरा में अवतरित होता है। अतः प्रामाणिक गुरु के आदेश के पालन का अर्थ है इंद्रियों को सचमुच नियंत्रण करना, पूर्ण श्रद्धा तथा निष्ठा के साथ ऐसी तपस्या करके ब्रह्मा जी इतने शक्ति संपन्न बन गए कि वे ब्रह्मांड के सृष्टा हो गए। ऐसी शक्ति प्राप्त करने के कारण ही उन्हें तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जीवन का मकसद है गुरु आदेश का पालन, और साथ साथ में जैसे ब्रह्मा जी ने अपनी इंद्रियों को, काम इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, मन और प्राणों को वश में किया था, ये बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं, अभ्यास न चकौंतेय वैराग्य न च गुह्यते, कि जीव को पूरा जीवन अभ्यास करते रहना चाहिए उन आदेशों का पालन करने के लिए। पूरा जीवन अभ्यास करना चाहिए अपनी मंत्र जाप को शुद्ध बनाने का, पूरा जीवन अभ्यास करना चाहिए अपने साधना को अच्छा बनाने का। और जैसे जैसे हम अपनी साधना को दृढ़ करते जाएं, उसी के साथ साथ वैराग्य न चकुहियते। वैराग्य मतलब इंद्रियों के भोग से अनासक्ति, इंद्रियों को अपने विषयों से दूर रखना। ऐसा नहीं, ये इंद्रियां जो हैं, वो अगर अपने विषयों में लगी रहीं, फिर चाहे हम कितनी भी साधना करेंगे, उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि एक न एक इंद्रिय जो है वो मन और प्राणों को अपनी ओर खींच लेगी और हमारी पूरी साधना जो है उसका नाश हो जाएगा। इसलिए जैसे ही हम देवीय मार्ग पर या कृष्ण भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो साथ साथ में दो काम होने चाहिए, एक हमारी साधना परफेक्ट होनी चाहिए और दूसरी अपनी इंद्रियों का वशीकरण होना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे कि इंद्रियों के नियंत्रण का अर्थ है उन्हें भगवान की सेवा में लगाना, आंखों से भगवान के दर्शन करना, कानों से भगवान की कथाओं को सुनना, मुख से भगवान के नाम का उच्चारण करना, जिह्वा से भगवान को दिए हुए प्रसाद को टेस्ट करना, हाथों से भगवान की सेवा करना, पैरों से मंदिरों की ओर जाना। तो ये जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगेंगी, तो मन जो है इंद्रियों की बात मानता है, मन हमेशा इंद्रियों के पीछे भागता है। तो जैसे इंद्रियां लग जाएंगी मन में, भगवान में, तो मन और प्राण भी भगवान में लगने लगेंगे। इसलिए इंद्रियों को खुली छूट नहीं देनी चाहिए, तपस्या के साथ साथ, साधना के साथ साथ इंद्रियों को भी वश में करना चाहिए। आगे सुखदेव गोस्वामी बताए, मानो वरिष्ठ महाराज पूछ रहे हो कि सुखदेव गोस्वामी, देवताओं के 1000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को क्या प्राप्त हुआ? तो उसका उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मै स्वलोकम् भगवान् सभाजितः सन्दर्शयामास परम् न यत्परम् व्यपीत संक्लेश विमो असाध्वसम् स्वदृष्ट विद्भिर्
पुरुषैरभीष्टितुम् तस्मै स्वलोकम् भगवान् सभाजितः सन्दर्शयामास परम् नयत् परम् व्यपीतसङ्क्लिशविमो असाध्वसम् स्वदृष्टवद्भिर्पुरुषैरभीष्टितुम् तस्मै स्वलोकम् भगवान् सभाजितः। सभाजित का मतलब है भगवान ब्रह्मा की तपस्या बहुत प्रसन्न हुए, और ब्रह्मा की तपस्या से प्रसन्न होने के बाद तस्मै स्वलोकम उसको, स्व मन अपना, भगवान का अपना लोक, किसका लोक, स्वलोकम भगवान, भगवान ने अपना लोक संदर्श मासा, संदर्श मतलब प्रकट किया, परम यानी सर्वश्रेष्ठ, न यत, न मना नहीं, यत मना जिसका, परम मना उससे श्रेष्ठ, परम न यत परम ऐसा लोक जिससे श्रेष्ठ और कोई दूसरा लोक नहीं है। व्यापेत साध्वस्वम, व्यापेत मना बिना मोह के, साध्वस्वम यानी संसार का भय, संक्लेश, संक्लेश मतलब पांच प्रकार के भौतिक ताप, विमोह यानी बिना मोह के, साध्वसम माने संसार का भय, स्वदृष्टवत भी यानी जो स्वरूप सिद्ध है उनके द्वारा, पुरुष है, पुरुष द्वारा अभिष्टितुम अर्थात पूजित है। अनुवाद, श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम यानी वैकुंठ लोक को दिखलाया। यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के क्लेशों तथा सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने जो तप कष्ट सहे वे निश्चय ही भक्ति की श्रेणी में थे, अन्यथा ब्रह्मा को स्वलोकम अर्थात भगवान का निजी धाम वैकुंठ लोक ना दिखता। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं तपस्या तो बहुत तरह की होती है, लेकिन जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए जो तपस्या की जाती है, जो भगवान के लिए की जाती है, उसी के द्वारा जीव को वैकुंठ लोक या भगवान का लोक प्राप्त होता है। भगवान का स्वलोक अर्थात वैकुंठ ना तो काल्पनिक है न भौतिक जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं, किंतु भगवान के इन दिव्य धामों की प्राप्ति भक्ति द्वारा ही संभव है, और इस प्रकार भक्त लोग ही इन धामों में प्रवेश कर सकते हैं। निसंदेह तप करना कष्टप्रद है, किंतु भक्ति योग साधना में जो कष्ट सहे जाते हैं वे आरंभ से ही दिव्य आनंद प्रदान करने वाले हैं, वाले होते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि साधारणतया जिस भी रास्ते पर हम जाते हैं तो कष्ट होगा, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे वो कर्म मार्ग हो, चाहे ध्यान मार्ग हो, लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा है, कष्ट तो इसमें भी है परंतु इसमें प्रारंभ से ही, भले हम भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचे नहीं, प्रारंभ से ही जो क्लेश है वो भी आनंद देने वाले हैं, दिव्य आनंद, क्योंकि भक्ति में एक संबंध होता है ना कृष्ण के लिए, तो कृष्ण के लिए जागना वो भी आनंदमय है, कृष्ण के लिए कुछ सेवा करना वो भी आनंद प्रदान करने वाली है, कृष्ण को भोजन बना के अर्पण करना वो भी आनंद प्रदान करने वाली है, कृष्ण के लिए वस्त्र बनाना वो, कृष्ण की आरती करना, कृष्ण को कभी चंदन यात्रा, कभी पुष्प अभिषेक, कभी झूलन यात्रा, क्योंकि उसमें साक्षात्कार है ना, कृष्ण का प्रेम भी तो है, मेरा कृष्ण, और इतना अंदर से आनंद हो रहा होता है वो सेवा करते हुए कि उसमें कभी भी भक्त को ये तक रहता नहीं है कि मुझे इस सेवा में कष्ट हुआ, बल्कि और भी आनंद आ रहा होता है, और भी वो मौका देख रहा होता है। सुबह से लेकर रात तक भक्त को यदि भगवत सेवा दी जाती है तो वो उसी में, जैसे श्रवण करना, जो श्रवण करने में भक्त की इतनी लालसा होती है कि उसके कान जो हैं वो सदैव सुनना चाहते हैं कि मैं भगवान के विषय में कुछ श्रवण करूं। जब कीर्तन का अवसर मिलता है तो भक्त जो है वो प्रफुल्लित हो रहा होता है, हृदय उसका आनंदित हो रहा होता है कि आज मुझे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने का अवसर मिल रहा है। जब उसे कथा करने का या कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है तो वो समझता है कि भगवान मुझे इतना प्रसन्न है कि भगवान मुझे अपनी इस दिव्य सेवाओं में लगा रहे हैं। तो वो स्टार्ट से ही, इवन अभी तक कोई प्रोग्राम होने वाला होता है ना, जैसे कोई प्रोग्राम होने वाला होता है ना नरसिंह चतुर्थी का प्रोग्राम, तो दो दिन पहले से अंदर से उल्लास होने लगता है कि ये प्रोग्राम होगा, इसमें इतना आनंद आएगा, यज्ञ होगा, अभिषेक होगा, हम भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान की आरती होगी, संकीर्तन होगा, भक्तों का संग होगा। तो वो इतना आनंदमय तपस्या होती है कि उसके केवल केवल सोचने मात्र से जी भक्त को आनंद आता है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि किंतु आत्म साक्षात्कार की अन्य विधियां जैसे ज्ञान योग, ध्यान योग इत्यादि में तप कष्ट प्रदाय होता है, इससे अंततः कष्ट ही मिलता है और वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोनों से रहित भूसी को चबाने सॉरी दानों से रहित भूसी को चबाने से क्या लाभ। इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार के लिए भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कष्ट प्रद तपस्या करने से कोई लाभ नहीं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी साहब बता रहे, जैसे भगवान कहते हैं क्लेशोधिक तरस्तेसा अव्यक्ता सक्त चेतसा, अव्यक्ता ही गतिर दुखम, उसकी गति दुखदायी है। न संसार में उसका तपस्या को जो कि अव्यक्त के लिए किया जाता है या निर्विशेष के लिए किया जाता है या ध्यान योग्य, उस संसार में भी उसका कोई आनंद नहीं आएगा, उसमें भी तकलीफ होगी और उसके बाद वैकुंठ प्राप्त नहीं होगा। वो तो कोई ज्योति के अंदर प्रवेश हो जाएगा जिसमें कोई आनंद है। तो श्रील प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि भाई धानों से रहित भूसी को चबाने से क्या फायदा है ना, जिसमें आनंद ही नहीं दोनों जगह, तो फिर ऐसा मार्ग क्यों अपनाया जाए जिसके लिए साक्षात भगवान स्वयं कहते हैं क्लेशोधिक तरस्तेसा कि वो बहुत ज्यादा कष्टप्रद रास्ता है। और बुद्धिमान तो वही है जो आसान रास्ते पर चलकर वही गंतव्य प्राप्त करे। भगवान यही तो बताना चाह रहे हैं, व्हेन द इजी पाथ इज अवेलेबल देन व्हाई यू चूज द हार्ड पाथ, है ना, जो मुश्किल पाथ है उसको क्यों स्वीकार किया जाए। आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति योग साधना श्री भगवान के उदर से निकले कमल पर आसन जमाने के समान है, क्योंकि ब्रह्मा जी उसी पर आसीन थे। ब्रह्मा जी भगवान को प्रसन्न कर सके और भगवान ने भी प्रसन्न होकर उन्हें अपना दाम दिखलाया। श्री जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की क्रम संदर्भ नामक अपनी टीका में गर्ग उपनिषद के से वह उद्धरण दिया है जिसमें कहा गया है कि याज्ञवल्क्य ने गार्गी से भगवान के दिव्य लोक के विषय में वर्णन किया और बताया कि वह लोक ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक के ऊपर स्थित है। भगवान का यह दाम अल्प ज्ञानियों के लिए गुंथी बना रहता है। यद्यपि भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों में उसका वर्णन है, यहाँ पर स्वदृष्टवत भी शब्द महत्वपूर्ण है। जो वास्तव में स्वरूप सिद्ध है वही अपने दिव्य स्वरूप को समझ पाता है। स्व तथा परमेश्वर का निर्विशेष साक्षात्कार पूर्ण नहीं है, क्योंकि संसारी व्यक्तियों का यह विरोध विचार है। भगवान तथा भगवत भक्त सभी दिव्य हैं, उनके कोई भौतिक शरीर नहीं होता है। भौतिक शरीर में 5 प्रकार के क्लेशों का आवरण होता है, ये हैं अविद्या, भौतिक बोध, आसक्ति, घृणा तथा अवशेषण। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे कि जो भौतिक शरीर है उसमें अज्ञानता होती है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ज्ञान होता है, सच्चिद आनंद होता है। भौतिक बोध होता है, यानी अपने आप को शरीर समझते हैं, लेकिन दिव्य चेतना में अपने आप को भगवान का दास समझते हैं। भौतिक शरीर में संसार से आसक्ति होती है, लेकिन वही आसक्ति आध्यात्मिक बोध में भगवत प्रेम में बदल जाती है। भौतिक शरीर में घृणा होती है और आध्यात्मिक शरीर में केवल कृष्ण प्रेम होता है। और भौतिक शरीर अवशेषण होता है, अर्थात समाप्त हो जाने वाला है, और जो आध्यात्मिक शरीर है वो तो शाश्वत होता है। जब तक मनुष्य इन पांचों क्लेशों से घिरा रहता है, तब तक वैकुंठ लोक में उसके प्रविष्ट होने का प्रश्न नहीं उठता है। अब यहाँ से हमें ये सीखना है कि हमें यदि भगवान के धाम में प्रवेश करना है तो इन पांच अपराधों से, इनसे हमें बचना होगा, इन पांच क्लेशों से अविद्या को समाप्त करना होगा। अविद्या क्या है? अविद्या ये है कि मैं ये शरीर हूँ या इस संसार का जो भी वस्तु है वो मेरी है, यही अविद्या है। और विद्या क्या है, ज्ञान क्या है, कि मैं आत्मा हूँ, और यही बस विद्या है कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। और भौतिक बोध से को समाप्त करना होगा, मतलब मैं ये शरीर को छोड़कर मैं भगवान का दास हूँ, ये जानना पड़ेगा कि मुझे भगवान की सेवा करनी है। संसार की सेवा भौतिक बोध, और ना भगवान की सेवा जो है वो आध्यात्मिक बोध है। संसार से आसक्ति हमारे सर्वनाश का कारण बनती है, और भगवान का प्रेम हमारे भगवत धाम ले जाने का कारण बनती है। इस संसार में द्वेष यदि हम किसी से करते हैं तो वो पुनः जन्म देने का कारण बनता है, और वही द्वेष समाप्त हो जाता है। संपूर्ण जीवों में भगवत स्वरूप को देखकर सबका आदर, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, किसी भी योनि में हो, जीव से कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद अंतिम है अवशेषण, मतलब संसार के साथ कोई भी मतलब कोई भी आसक्ति नहीं होगी तो फिर जीव जो है उन्हें इस संसार में जन्म नहीं लेगा, चाहे कैसी भी आसक्ति हो, चाहे किसी के साथ प्रेम हो, किसी के साथ नफरत हो, किसी के साथ द्वेष हो, किसी के साथ राग हो, कोई भी अवशेषण बाकी नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ श्री प्रभुपाद कहते जब तक वैकुंठ लोक में उसके प्रविष्ट होने का प्रश्न नहीं होता है, जब तक जीव इन पांच अवरोधों से या क्लेशों से घिरा होता है। स्व की निर्विशेष विचारधारा भौतिक व्यक्तित्व का निषेध है, और दिव्य स्वरूप की आसक्ति से कोसों दूर है। मतलब जो लोग भगवान के निर्विशेष स्वरूप में लीन होना चाहते हैं, तो वो जो है वो दिव्य स्वरूप की अस्तित्व से बहुत दूर है। उनको पता ही नहीं है कि हमारे एक दिव्य स्वरूप भी है जो गोलोक वृंदावन धाम में है, और हमें उस दिव्य स्वरूप को प्राप्त करके उस स्वरूप के साथ भगवान के संबंध में प्रेम का आदान प्रदान करना है। तो वो तो बहुत उनको पता ही नहीं है, तो वो भगवान के धाम में नहीं जा सकते। अगले श्लोकों में दिव्य धाम के सगुण रूपों की व्याख्या की जाएगी। ब्रह्मा जी ने भी सर्वोच्च लोक वैकुंठ लोक को गोलोक वृंदावन धाम कहा है, जहाँ भगवान गोप के रूप में दिव्य सुरभि गायों सहित सैकड़ों हजारों लक्ष्मियों से घिरे रहते हैं। चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्य वृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शतसा ब्रह्म सेव्यना मानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता के इस श्लोक से, जिसमें ब्रह्मा जी ने गोलोक वृंदावन धाम के विषय में बताया कि वो ऐसा धाम है जो चिंतामणि जो डायमंड्स हैं उससे सजा हुआ है, और कल्प वृक्ष है उसके अंदर, लक्षावृषेत सुरभि रविपा बहुत सारी सुरभि गायों जो कि कामधेनु गौ हैं वो वहां पर रहती हैं, और प्रत्येक इच्छा को पूरा करती हैं जो भगवान की सेवा की इच्छा है। लक्ष्मी सहस्त्र सतसम ब्रह्म सेव्य, हजारों लक्ष्मियां जो है वो भगवान की सेवा करती हैं। ऐसे भगवान के धाम के विषय में बताने के बाद वो भगवान को प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के इस कथन यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम मम की भी पुष्टि होती है। परम का अर्थ है परब्रह्म, अतः भगवान का धाम भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है। ब्रह्म भी है, भगवान वैकुंठ कहलाते हैं और उनका धाम भी वैकुंठ है। ऐसे वैकुंठ का साक्षात्कार तथा पूजा दिव्य रूप तथा इंद्रिय द्वारा संभव है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब जीव को अपने आध्यात्मिक स्वरूप का बोध हो जाता है तब वो भगवान और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। आगे सुखदेव गोस्वामी भगवान के उस परम धाम की महिमा बतला रहे हैं। वास्तव में भक्तों, ये परम धाम की प्राप्ति ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और ये जीव आत्मा का अधिकार भी है। ये तो हमारी अज्ञानता है जिसके कारण हम इस मृत्यु लोक में जहाँ पर पग पग पर दुख है, कष्ट है, हम यहाँ अपनी अज्ञानता के कारण आए हैं और आज भी इतना सब ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हमारे मन में इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करने की इच्छा या उसके लिए सीरियसनेस के साथ हमें अपनी इंद्रियों को अपने मन को वश में करके भगवत सेवा के लिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। इसीलिए भगवान जो है शास्त्रों के द्वारा अपने परम धाम के विषय में बताते हैं कि देखो जहाँ तुम रहते हो वो रहने की जगह नहीं है, रहने की जगह तो मेरा धाम है। इसलिए यहाँ पर भी हम देखें कोई बहुत बड़ा राजा हो यदि तो उसका जो राजमहल होता है उसके अंदर संसार भर की सुविधाएं होती है, है ना, बहुत ही सुंदर लग्जरियस माहौल होता है वहाँ पर। हर एक वस्तु जो होती है वो इतनी आनंदमय होती है, उनका राजमहल कितना तो ऐसा राजमहल जो संसार का भी एक धनी व्यक्ति जो होता है उसका जो बंगलो होता है, उसका घर होता है इतना, तो हम सोच सकते हैं ना कि जो पूरे विश्व का जो सृजन करने वाला है, पूरे विश्व को पालन करने वाला है, पूरे विश्व का निर्माण करने वाला है, पूरे ब्रह्मांड का जो नायक है, उसने अपना घर कैसा बनाया होगा। और हम भी अपना जो हमारा घर होता है उसमें अपने सारे बच्चों के लिए फैसिलिटीज रखते हैं, रूम रखते हैं ना, जिसके चार बच्चे होंगे चार बच्चों के लिए रूम होगा। उसी तरह भगवान ने भी हम सब के लिए, जितने भी जीव हैं, सारे जीव आत्माओं के लिए वहाँ पर एक अलग सुविधा है, उसका एक अलग एक स्टेज है, उसकी एक अलग सेवा है। हम सबका वहाँ पर स्वरूप, हम सुषुप्त अवस्था में भगवान के धाम में रहते हैं। ये तो हमारा भौतिक जगत में प्राकट्य इसलिए जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करके भगवत सेवा छोड़कर माया की सेवा करने का ये जो अपराध किया जिसके कारण हमको इस संसार में आना पड़ा। लेकिन वो जो भगवान का धाम है वो ना केवल हमारा लक्ष्य है बल्कि हमारा अधिकार भी है। बस उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए हमको डिजर्वेबल बनना पड़ेगा, सिर्फ इन भौतिक जगत के आसक्ति को, इस भौतिक जगत में जो हम मेरा और मैं में फंसे हुए हैं, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये अहंकार से को हटाकर कृष्ण मेरा है और मैं कृष्ण का हूँ, ये जब तक नहीं आएगा मन में, जब तक संसार के साथ राग और द्वेष बना रहेगा, जब तक संसार में किसी का मान, किसी का निंदा, किसी का अपमान, ये द्वेष ये सब बना रहेगा, तब तक हम यहाँ पर ही भटकते रहेंगे और हम अपने साथ कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं कि इतने सुंदर सुखमय भगवान के धाम को छोड़कर हम इस भौतिक जगत में तड़प रहे हैं, दिख भी रहे हैं। हम एक एक पग पे पदम पदम ये विपता सर्वत्र दुखम पश्यत, एक एक कदम पर विपता है, हर ओर से दुख दिखता है, फिर भी हम चाहते कि इसी संसार में मरे पड़े रहें, इस संसार से निकलकर भगवत धाम प्राप्त करने के लिए तब तक हम सोच सकते हैं। ये 100 साल की जिंदगी है और 100 साल की भी नहीं है, ये तो कितनी कम जिंदगी है, उसमें से शुरू के 10 साल तो बचपन में निकल जाते, आगे के 5-10 साल जो है वो बुढ़ापे में मरते मरते निकल जाते, बीच के जो थोड़ा सा समय है 40-50 साल वो अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, उसके बाद हमें कितना आनंदमयी धाम प्राप्त हो सकता है ना। हम सोचते हैं कि हम इस जवानी के दिनों में आनंद कर लें, इस भौतिक जगत में भोग कर लें, ये खा लें वो पी लें, उससे प्राप्त कर लें, उससे इंद्रिय सुख प्राप्त कर लें, तो हम अपने आप को सुखी मानते हैं। ऐसा सुख तो भगवान कहते हैं, ऋषभ देव अपने पुत्रों को बोलते हैं कि ये नायम देहो देह बाजाम निर्लोके कष्टान कामन अर्थ विट्ट पुजान, जो सुअर और कुत्ते हैं ना वो भी आहार और मैथुन का सुख प्राप्त करते हैं। अगर हम मनुष्य जीवन में ये सुख प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक लोक को त्याग रहे हैं, उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो इससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। तो उस वो धाम कैसा है उसके विषय में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुता परिहरे अनुव्रता यत्र सुरा सुरार्चिता। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रमा न यत्र माया किमुता परिहरे अनुव्रता यत्र सुरा सुरार्चिता। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो, प्रवर्तते मतलब रहता है, यत्र जहाँ पर, रजस तमस यानी रजोगुण तथा तमोगुण, तयो यानी उन दोनों का, सत्वम अर्थात सत्वगुण, च तथा मिश्रम यानी मिश्रण, न कभी नहीं, न च काल विक्रम, काल मना समय, विक्रम प्रभाव। भगवान के धाम में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, प्रवर्तते यत्र रजस्तमो, वहां पर ना रजोगुण होता है ना तमोगुण होता है, ना ही सत्वगुण का भी पर उनका कोई प्रभाव होता है, मतलब शुद्ध सत्व में वहां पर जो शुद्ध सत्व होता है ये तीनों गुण से ऊपर होता है। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात बता रहे, न च काल विक्रम, कि वहां पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, समय नहीं समाप्त होता है वहां पर। ये आगे कहते हैं, न यत्र माया, वहां पर कोई माया नहीं होती, बहिरंगा छलनी जो शक्ति है भगवान की वो वहां पर नहीं आ सकती। किम उत, क्या वहां पर अपरे अन्य हरे, भगवान के अतिरिक्त वहां पर और कुछ नहीं होता है, वहां पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और अनुव्रता यत्र सुरा सुरार्चिता, अनुव्रता मतलब भक्त, यत्र वहां पर सुर असुर यानी देवता जाएंगे या असुर, जो भी उस धाम में जाएंगे उनका काम क्या होगा, अर्चिता, वो भगवान की पूजा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, वहां पर केवल और केवल भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान है, वो चाहे किसी भी स्वरूप में जीव चाहता है उस स्वरूप में भगवान के साथ प्रेम का संबंध निर्माण करता है। वहां पर ना काल का ही प्रभाव होता है ना कोई गुण या माया का प्रभाव होता है। अनुवाद देखिए, भगवान के स्वधाम में ना तो रजोगुण और तमोगुण रहते हैं ना ही सत्वगुण पर इनका कोई प्रभाव दिखता है, वहां पर काल को प्रधानता प्राप्त नहीं है, फिर बहिरंग शक्ति यानी माया का तो कहना ही क्या, इसका तो वहां प्रवेश भी नहीं हो सकता। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान का धाम या वैकुंठ लोक का वातावरण जिसे त्रिपाद विभूति कहा कहते हैं, भौतिक ब्रह्मांडों की उपेक्षा 3 गुना विशाल है। जब यहाँ पर अगर हम देखते हैं 25% जीव है तो वहां पर 75% जीव है, 3 गुना ज्यादा विशाल है। और जिसका वर्णन यहाँ पर तथा भगवत गीता में संक्षिप्त में हुआ है, यह ब्रह्मांड अपने करोड़ों ग्रहों तथा नक्षत्रों सहित तत्व की परिधि में संपुंजित अरबों ब्रह्मांडों में से एक है। ये समस्त ब्रह्मांड मिलकर भगवान की सृष्टि के चतुर्थांश के तुल्य हैं, यानी चतुर्थांश, ये जो चौथा हिस्सा। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह ब्रह्मांड अपने करोड़ों ग्रहों तथा नक्षत्रों सहित, जो भौतिक ब्रह्मांड है जिसके अंदर करोड़ों ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, महातत्व की परिधि में संपूजित अरबों करोड़ों अरबों ब्रह्मांडों में से एक है। और ये समस्त ब्रह्मांड मिलकर, यानी संसार में जितने भी ब्रह्मांड हैं उनमें जितने भी जीव हैं, वो सब मिलकर भगवान की सृष्टि के चतुर्थांश के तुल्य हैं। वो भगवान की जो भगवान का जो धाम है उसके सिर्फ चौथे हिस्से के बराबर है। वहाँ दिव्य आकाश भी है जिसके परे वैकुंठ नामक आध्यात्मिक लोक है, और ये सब मिलकर शेष 3/4 भाग बनाते हैं। ईश्वर की सृष्टियाँ सदा अनंत होती हैं, यहाँ तक कि एक वृक्ष की पत्तियों या मनुष्य के सिर के बालों की गणना कर पाना असंभव है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति ईश्वर बनने के विचार से फूले फूले फिरते हैं, भले ही वे अपने शरीर का एक बाल भी बना नहीं सकते। मनुष्य यात्रा करने के नाना प्रकार के योनियों का भले ही आविष्कार कर ले और बहु प्रचारित अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा पर भी पहुंच जाए, किंतु वह वहां पर रह नहीं सकता। फलतः जो मनुष्य बुद्धिमान है वे अपने को ब्रह्मांड का ईश्वर मानने का दम नहीं करते। वे सत्व ज्ञान प्राप्त करने के सरलतम साधन वैदिक साहित्य के आदेश का पालन करते हैं। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर एग्जांपल दे रहे हैं कि मनुष्य अपने आप को भगवान कहता है, इतने भगवान की जो सृष्टि होती है वो अनलिमिटेड होती है, एक वृक्ष के पत्तों की गणना नहीं कर सकता, अपने शरीर में जितने रोम हैं, जितने बाल हैं, उनकी गणना तक नहीं कर सकता। गणना तो छोड़ दीजिए, एक बाल यदि निकल जाए तो स्वयं उसको लगा भी नहीं सकता और अपने आप को भगवान कहना शुरू कर देता है। तो ये केवल मूर्खता है, बुद्धिमानता यही है कि वो भगवान को स्वीकार करे और भगवान के आदेशों का पालन करे और भगवान की सेवा करे, अपने आप को भगवान का दास समझकर इस संसार से भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए इच्छा करे और उसी भगवान के आदेशों को पालन करके भगवत धाम को प्राप्त करे। अतः हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवतम से हम भौतिक आकाश से परे दिव्य जगत की प्रकृति तथा रचना के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकें। उस आकाश में भौतिक गुणों विशेष रूप से रजो तथा तमोगुण का सर्वथा अभाव रहता है। तमोगुण के कारण जीव आत्मा में काम तथा वासना की आदतें उत्पन्न होती हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि वैकुंठ लोक में जीव आत्माएं इन दोनों बातों से मुक्त हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है। मनुष्य ब्रह्मभूत अवस्था में वासना तथा शोक दोनों से मुक्त हो जाता है। अतः इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि वैकुंठ लोक के निवासी ब्रह्मभूत जीव आत्मा हैं, जबकि संसारी जीव वासना तथा शोक से पूर्ण रहते हैं। जब भौतिक जगत में कोई व्यक्ति रजोगुणी तथा तमोगुणी नहीं होता तो उसका यह अर्थ होता है कि वह सत्वगुणी है, किंतु भौतिक जगत में सत्वगुण भी कभी कभी रजोगुण तथा तमोगुण से दूषित हो जाता है। वैकुंठ लोक में केवल अमिश्रित सत्वगुण पाया जाता है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी वैकुंठ में जो भौतिक गुण हैं उनमें वो प्रवेश नहीं कर सकते, केवल शुद्ध सात्विक गुण ही प्रवेश कर सकता, उसके विषय में बता रहे। और आगे वे कहते हैं, वहाँ की सारी परिस्थिति बहिरंगा शक्ति की मोहमयी दृष्टि से मुक्त रहती है। यद्यपि माया भी परमेश्वर की अंश स्वरूप है, किंतु वह परमेश्वर से भिन्न है, परंतु वह मिथ्या यानी मृषा नहीं है, जैसा कि एकेश्वरवादी दार्शनिक मानते हैं। रस्सी को सांप समझना किसी व्यक्ति विशेष के लिए भ्रम हो सकता है, किंतु रस्सी तो वास्तविकता है और सर्प भी वास्तविकता है। गर्म मरुस्थल में जल ढूंढते हुए मूर्ख पशु के लिए मृग तृष्णा भ्रम हो सकती है, किंतु मरुस्थल तथा जल दोनों सत्य हैं। अतः अभक्त के लिए भले ही भगवान की भौतिक सृष्टि भ्रम लगे, किंतु भगवान के भक्त के लिए वही सत्य है और वह भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। किंतु भगवान की यह शक्ति ही सब कुछ नहीं है, भगवान की एक अंतरंगा शक्ति भी होती है, जिसकी एक अन्य सृष्टि होती है, जिसे वैकुंठ लोक कहते हैं, जहाँ न अविद्या है, न वासना है, न ब्रह्म है, न भूत है, न वर्तमान है। अल्प ज्ञान के कारण मनुष्य वैकुंठ लोक के जैसे इन वस्तुओं को भले ही न समझ पाए, किंतु इससे उनका अस्तित्व समाप्त तो नहीं होता। यद्यपि अंतरिक्ष यान ऐसे लोकों तक नहीं पहुंच पाते, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि ऐसे लोक है ही नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में उनका वर्णन मिलता है, जैसा कि श्री जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है। नारद पंचरात्र से हम जान सकते हैं कि दिव्य जगत अर्थात वैकुंठ लोक दिव्य गुणों से युक्त है। ये दिव्य गुण जो भगवान की भक्ति के माध्यम से प्रकाश में आते हैं, सांसारिक रजो तमो तथा सतो गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे गुण अभक्तों द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहा गया है कि भगवान की एक चौथाई सृष्टि से परे शेष तीन चौथाई संसार है। भौतिक सृष्टि तथा आध्यात्मिक सृष्टि के बीच की विभाजक रेखा विरजा नदी है, जो भगवान के शरीर के पसीने से निकलती है। इसके परे ही शेष तीन चौथाई सृष्टि है। यह अंश शाश्वत अमर अक्षर तथा अंततः है, अनंत है, और इसमें जीवन की परम सिद्धि स्थिति विद्यमान रहती है। सांख्य कौमोदी में कहा गया है कि अमिश्रित सत्वगुण अर्थात सत्व अथवा दिव्यता भौतिक गुणों के सर्वथा विपरीत है। वहाँ की समस्त जीव आत्माएं अखंडित शाश्वत रूप से परस्पर संबंधित हैं और भगवान प्रदान तथा सर्वोपरि सत्ता हैं। आगम पुराणों में भी दिव्य धाम के का वर्णन इस प्रकार से मिलता है। पार्षदों को भगवान की सृष्टि में कहीं भी जाने की छूट है और ऐसी सृष्टि की कोई सीमा नहीं है। विशेष रूप से तीन चौथाई क्षेत्र में असीम क्षेत्र होने के कारण इस संयोग का ना तो इतिहास है न इसका कोई अंत है। यह निष्कर्ष निकलता है कि वहाँ पर भौतिक रजो तथा तमोगुण के सर्वथा अभाव के कारण सृष्टि या प्रलय का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु की सृष्टि होती है और फिर उसका विनाश होता है, और सृष्टि तथा विनाश के मध्यावधि क्षणिक है। दिव्य लोक में ना तो सृष्टि होती है ना विनाश होता है, फलदा जीवन की अवधि अनंत होती है। दूसरे शब्दों में दिव्य लोक की प्रत्येक वस्तु अमर है, वह ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण है और अविनश्वर है। विनाश ना होने से कालानुमान हेतु वहाँ पर ना तो भूत है, ना वर्तमान है, ना भविष्य है। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि काल का प्रभाव उसकी अनुपस्थिति में प्रकट प्रकट है। सारा संसार तत्वों के घात प्रतिघात से प्रकट होता है, जिससे भूत वर्तमान तथा भविष्य के रूप में समय का प्रभाव सुस्पष्ट हो दिखता है, किंतु वहाँ पर कार्य कारण के ऐसे घातक प्रतिघातक नहीं होते। अतः जन्म चक्र, वृद्धि, अस्तित्व, रूपांतर, क्षय तथा प्रलय, ये छह भौतिक परिवर्तन नहीं पाए जाते। तो वहाँ पर न जन्म होता है, न ही बड़े होते हैं, न वृद्धि होती है, न ही बूढ़े होते हैं, न ही हमारे रूप का अंतर होता है, न क्षय होता है, न प्रलय होता है। तो ये तो भगवान की शक्ति का शुद्ध प्राकट्य है और इसमें कोई माया नहीं है, जैसा कि इस भौतिक संसार में अनुभव होता है। वैकुंठ का समग्र अस्तित्व बताता है, यह तो भगवान की शक्ति का शुद्ध प्राकट्य है और इसमें कोई माया नहीं है, जैसा कि इस भौतिक संसार में अनुभव होता है। वैकुंठ का समग्र अस्तित्व बताता है कि वहाँ का प्रत्येक जीव भगवान का अनुचर है। वहाँ भगवान ही मुख्य नेता है। वहाँ नायकत्व के लिए कोई होड़ नहीं है और सारे लोग भगवान के अनुगामी हैं। अतः वेदों में पुष्टि की गई है कि भगवान ही प्रधान नायक है और शेष सारी जीव आत्माएं उनके अधीन है, क्योंकि ईश्वर ही इन सभी के आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी हमें ये बता रहे हैं कि भगवान का धाम कितना आनंदमय है, कितना सुखमय है और वही वास्तव में रहने की जगह है। इसलिए जीव को यहाँ भौतिक जगत में जब मनुष्य योनि मिलती है तो उसी धाम को प्राप्त करने के लिए, जहाँ पर ना कोई गुण है, ना ही भौतिक गुणों का असर है, ना ही कोई क्लेश है, ना कोई दुख है, उसी को प्राप्त करने के लिए जीव को सदैव प्रयास करना चाहिए और यही एकमात्र लक्ष्य है भौतिक जगत में मनुष्य जीवन प्राप्त करने का। आज इस भौतिक जगत में अज्ञानता के कारण हम ये सोचते हैं कि इसी जगत में हम कैसे सुखी रह सकते हैं। हम हर वक्त ये कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने इन भौतिक दुखों को कम करके या खत्म करके कुछ ऐसी सुविधाएं प्राप्त की जाए जिससे हम सुखी रहें। यहाँ तक कि अपने संतान को, आज हम अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा एजुकेशन प्रदान करते हैं, वकील बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं। उसका पर्पस क्या होता है? सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन प्राप्त करनी है, बड़े से बड़ा डॉक्टर बनना है, वकील बनना, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप अर्न कर सको, धन कमा सको, और धन कमा के बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ होनी चाहिए तुम्हारी, तुम्हारे पास बहुत अच्छे बंगलो होने चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां होनी चाहिए, लग्जरियस लाइफ होनी चाहिए, सुंदर पत्नी होनी चाहिए और सुंदर बच्चे पैदा करके और उनको भी इसी तरह से तुम शिक्षित करना। मतलब हमारे माइंड में भी नहीं होता। आज की सभ्यता में हम ये भी नहीं, अपने बच्चों को ये तक नहीं बताते हैं कि इस भौतिक जगत में हमें शाश्वत रूप से रहना नहीं है। हम बहुत थोड़े समय के लिए इस भौतिक जगत में आए हैं और अगर हम इस भौतिक जगत में मनुष्य की योनि प्राप्त करके भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे और सिंसियरली, मतलब हृदय के अंदर ना द्वेष हो, ना काम वासना हो, ना दूसरों के लिए घृणा हो, ना नफरत हो, सबके साथ इक्वल, सबके साथ समभाव रख के यदि हम अपनी प्रगति के विषय में सोचेंगे तो अवश्य हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर जाने के बाद कोई कठिनाई नहीं रहेगी, जहाँ पर जाने के बाद कोई प्रॉब्लम, कोई कष्ट, कोई दुख हो ही नहीं सकता है। तो ये कितना सुंदर और कितना सरल उपाय है कि इस भौतिक जगत में थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी तपस्या और सिंसियरिटी के साथ भगवत भक्ति करके हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। हमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण जन्म मिला है और बहुत ही सुअवसर मिला है कि हम इस अवसर का लाभ उठाकर भगवत धाम को जाने की तैयारी करें। बस हमारे आचार्य गण तो कहते हैं ये भौतिक जगत तो टॉयलेट की तरह है, जिस प्रकार कोई यदि टॉयलेट में जाता है तो सिर्फ एक ही काम होता है, वो काम करके उसको फौरन से निकलना होता है, ताकि वो गंदगी वहाँ पर छोड़ के आना होती है बस। उसी तरह से ये भौतिक जगत गंदगी रखने की ही जगह है, वहाँ पर जो हमारे अपने अपराध हैं उन अपराधों की सजा भुगतनी है बस, और बाकी अपने को स्वच्छ करके वहाँ से निकलना है। ये जिस तरह से टॉयलेट रहने की जगह नहीं होती है, इसी तरह से ये भौतिक जगत रहने की जगह नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल आकर अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकता करके भगवत प्राप्ति करने के लिए प्रयास और प्रयत्न करने की जगह है ये। तो ये बहुत ही सिंसियरली हमको सोचना चाहिए अपने लिए, अपने कल्याण के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा सेल्फिश हो जाना चाहिए, है ना, कि मुझे अपना उद्धार करना है। दूसरों का मैं जितना भी कर सकता हूँ, जितना मुझसे प्रचार हो सकता है, जितना दूसरों के लिए मैं भगवत भक्ति के विषय में उन्हें बता सकता हूँ, उतना मैं अपनी ओर से, लेकिन खुद को तो इतना दृढ़ बनाना चाहिए, इतना संयमी बनाना चाहिए, इंद्रियों और मन को इतना निग्रह करना चाहिए कि भौतिक जगत की एक कण भी हमको आकर्षित ना कर सके। क्योंकि श्री प्रभुपाल जी कहते हैं, अगर थोड़ी सी भी आसक्ति भौतिक जगत में रह गई ना, तो भगवान प्राप्त नहीं होंगे। और अगर इस बार चूक गए तो कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा इस तरह का सुंदर अवसर फिर कब मिलेगा। आज तो हमारे पास गुरु हैं, साधु हैं, शास्त्र हैं, विग्रह हैं, ज्ञान है, महामंत्र है, लेकिन इस बार यदि इतनी सारी सुविधाओं के बाद हम चूक गए और दोबारा ना जाने कब आएंगे। और ये चैतन्य महाप्रभु का जो स्वर्ण युग है, जिसमें केवल महामंत्र ही हमारा उद्धार कर सकता है, वो ना जाने हमें प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो हमें अपने प्रति सिंसियरिटी के साथ अपने आत्मा के उद्धार के लिए और भगवत धाम के जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सिंसियरिटी के साथ शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करके अपने वास्तविक जीवन के वास्तविक लक्ष्य तक पहुंच सकूं।